हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रह न परः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गत प्रमोदुपनिषदे गायन्ति यं सामगा
ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 37। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यत्पाद शुष्व क्षण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वेष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशितो हरन्ति वज्रा युधवल्लभूषिता। यत्पाद शुश्रु क्षण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशितो हरन्ति वज्रा युधवल्लभूषिता। यत्पाद शुश्रु क्षण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वेष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशितो हरन्ति वज्रा युधवल्लभूषिता। शब्दार्थ यत् पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा। यत् मतलब जिनके पाद शुश्रूषमा, पाद मतलब पैर चरण, शुश्रूषण मतलब भोग, मुख्य कर्मणा मुख्य मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्मणा कार्य है। सत्य आदय, सत्य यानी सत्य भामा इत्यादि मतलब दूसरी, कौन सी दूसरी? द्विष्ट, द्विष्ट मतलब अष्ट कहते हैं आठ को और द्वि मतलब दो, आठ का दुगना मतलब 8 × 2 = 16। तो 16 सत्यभामा इत्यादि जो 16 सहस्र मतलब हजार, जो 16,000 योषिता यानी स्त्रियां, भगवान की जो 16,000 स्त्रियां हैं सत्यभामा इत्यादि। निर्जित्य संख्ये, निर्जित्य मतलब जिसको जीत कर या हरा कर, संख्य यानी युद्ध में। त्रिदशांस्ता, त्रिदशांस्त कहते हैं जो स्वर्ग में लोग रहते हैं ना उनको। तत् आशिता मतलब देवताओं के भोग्य। अब जो देवताओं में, स्वर्ग में जो देवता रहते थे उनके भोग्य की जो वस्तु है, तो उनको हरा के, देवताओं को हरा के निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्त तदोषिता हरंती छीनली किसे? वज्र युद्ध वल्लभा। वज्रायुध यानी जिसका शस्त्र वज्र है, कौन? इंद्र। उसकी वल्लभा यानी, वल्लभा यानी पत्नी। तो वज्र, वज्रायुध वल्लभा मतलब वज्र के स्वामी इंद्र की पत्नी अर्थात शची देवी। उचिता मतलब भोग्य योग्य। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि यत् पाद शुश्रु क्षण मुख्य कर्मणा। इस मुख्य कर्मणा का मतलब होता है इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है ना, तो वो कार्य क्या है? यत् पाद शुश्रु क्षण, सबसे ज्यादा कार्य जो महत्वपूर्ण है जीवन जीव का, एक मनुष्य का, जीव मात्र का सबसे ज्यादा मुख्य कार्य है यत् पाद शुश्रूषण, यानी भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, है ना। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें जीने के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, भोजन खाना। तो इसलिए कहा जाता है कि 100 काम छोड़कर भी भोजन खा लेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पवित्र रहना, है ना। तो कहा जाता है कि भाई उस 200 कार्य छोड़ के भी स्नान कर लेना चाहिए, यानी भोजन से पहले स्नान कर लेना चाहिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, या जो हमारे गुरुजन हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। तो यदि उन्होंने हमें कोई आदेश दिया है तो 1000 कार्य छोड़कर भी उनका आदेश का पालन करना चाहिए। और उससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमें अपना जप कंप्लीट करना चाहिए। तो भले खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, सारे कार्य साइड में रख के अपना जप जो हमारे गुरु महाराज ने संख्या दी है उससे हमें अवश्य पूरा करना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। यह भागवत का श्लोक है, उसमें कहा यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, उस भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है इस कलयुग में, कलावतद हरि कीर्तना, भगवान के पवित्र नाम के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इस कलयुग में क्योंकि नाम के द्वारा ही प्रसन्न किया जाता है तो ये सबसे ज्यादा मुख्य काम है। तो जब भी हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करने का या कीर्तन करने का या श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो तो सारे कार्यों से ज्यादा महत्व। हम अक्सर सोचते हैं ना, नहीं अभी ये वाला कार्य कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो वाला, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जो जिस कार्य को देना चाहिए वो है भगवान की सेवा करना। यत् पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, और आगे कहते हैं सत्यादयो द्विष्ट सहस्रयोषिता, सत्यभामी आदि, सत्यभामा आदि जिनकी 16,108 रानियां हैं, उनको उन्होंने क्या प्रदान किया, क्योंकि वो सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती थी। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनके लिए और कोई कार्य था ही नहीं। तो भगवान की सेवा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इससे मिलता क्या है, उसे हमारा, अब हम जो कोई कार्य करेंगे हमारा लाभ भी तो होना चाहिए ना। तो बताते हैं निर्जित्य संख्ये, जो संख्ये कहते हैं युद्ध में, निर्जित्य मतलब हरा कर, भगवान जब देख रहे हैं कि भक्त मुझसे प्रेम कर रहा है, सारे कार्य को छोड़कर मेरी सेवा कर रहा है, तो भगवान भी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, त्रिदशांश तदाशितो, यानी कि त्रिदशांश जो स्वर्ग के वासी हैं, उनकी जो भोग्य वस्तु है, यानी कि ऐसी भौतिक वस्तुएं तो आपको दे देंगे, उसमें तो कोई संशय नहीं। आजकल जीव के अंदर इतना श्रद्धा नहीं है कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे कार्य स्वतः पूरे हो जाएंगे। इस भौतिक जगत की क्या बात की जाए, वो तो बहुत निगरणीय है, लेकिन वह वस्तु जो स्वर्ग के वासियों के भोग्य है, वो भी हरंती, वो भी छीन के, किससे छीन के, वज्रयुध वल्लभो यानी शची देवी जो कि इंद्र की पत्नी है, उनकी जो संपत्ति है, जो उनके भोगने योग्य जो वस्तु है, वो भी उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी, क्योंकि उनकी पत्नी सदैव क्या करती थी, वही महत्वपूर्ण कार्य करती थी। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा होती है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो वो अवश्य पूरी होती है। इसे हमें सारे कर्मों से ज्यादा महत्व भगवान की सेवा को देना चाहिए। अनुवाद देखिए, समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा आदि रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। अब ये बहुत ही सुंदर भागवत महापुराण में कहानी है, जब सत्यभामा को भगवान ने इंद्र से छीन कर पारिजात का वृक्ष ला के दिया था। बहुत ही सुंदर है, उसको श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्यभामा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक है। नरकासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे सत्यभामा के साथ इंद्रलोक भी गए, जहां उनका स्वागत शची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण धराधाम में रहें, तब तक वे तरुणी बनी रहें। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारिका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारिका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारिका में उनके महल में ले आएं। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से सजा था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थे। एक बार वे अपने पति के साथ द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थीं कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारिका लौट आईं। वे सत्राजित की पुत्री थीं। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारिका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थीं। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को प्रेरित किया कि वे स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाएं और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार सामान्य पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए इच्छित वस्तुएं लाते हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों को के आदेश को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार की थी, किया था, अतएव भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में, भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतएव द्वारिका की रानियों को विश्व की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि द्वारिका में तो किसी भी वस्तु की कोई कमी हो ही नहीं सकती। तुम द्वारिका से आए हो, तुम इतने दुखी हो,
द्वारिका तो वह नगरी है जहाँ पर स्वर्ग के देवताओं के जैसा भोग है, क्योंकि उनकी भगवान की पत्नियां सदैव भगवान की सेवा करती हैं और द्वारिका में हर वो सुख संपत्ति समृद्धि है जो कि एक जीव को आनंदित कर सकती है। वहां से आने पर आपको आनंदित होना चाहिए, लेकिन आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हो? इतना ज्यादा आपका आपके मुख पर दुख किस बात का लग रहा है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और भगवान उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। भौतिक इच्छा छोड़ो, स्वर्ग तक स्वर्ग के आनंद को भी उन्हें दे देते हैं, फिर आप इतने ज्यादा दुखी क्यों? क्योंकि अभी तक युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, परंतु अर्जुन को दुखी देखकर वो अपने हृदय की बातें कह रहे हैं। आगे कहते हैं, यत् पाहुदंडा भ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यंग्रिभिरा श्रितंबला सबां सुधर्मा सुरसत्तमोचितां यत्पाहुदंडा भ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यंग्रिभिरा हृतंबलात् सबां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां यत्पाहुदंडा व्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यंग्रिभिरा हृतंबलात् सबां सुधर्मा सुरसत्तमोचितां। शब्दात् यत् बाहुदंडा, बाहुदंडा मतलब जिन वो भगवान जिनकी बाहों के बल के द्वारा उनके अंदर इतना बल है, उसके अभ्युदया मतलब उनसे प्रभावित होकर अनुजीविना सदैव जीवित रहकर, कौन? यदुवंशी लोग, जितने भी यदुवंशी थे वो सब भगवान की बाहों के बल के ऊपर आधारित थे। प्रवीरा, वो परम वीर थे, हैं मतलब वो अभी तक कुछ नहीं, वो तो सब भगवान के द्वारा, भगवान की बाहों के द्वारा, बल के द्वारा सुरक्षित हैं। और ह्य कुतो भयामहु, यहाँ बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ह्य कुतो सभी प्रकार से उनको कोई भी भय, भयामहु उनको तो कोई भय है ही नहीं। जिनको जिनकी रक्षा भगवान करते हैं उनको भला भय की क्या, उनको तो कोई भी भय नहीं होगा। तुम अभी द्वारिका से आए हो, वहां पर कोई भय नहीं हो सकता, कोई खतरा नहीं हो सकता, कोई किसी तरह की किसी को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि भगवान यद बाहुदंडा उनके बाहों के द्वारा सब कुछ सुरक्षित है वहां पर। यदु प्रवीरा, और सारे यदुवंशी बहुत ज्यादा बलवान हैं, तो यह कुतो भयामहु, फिर वहां पर भय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिक्रमंती अंग्री भी आहुरताम मतलब बलात्, ये जो उनके अंग्री भी कहते हैं उनके चरण कमल, जो भगवान है उनके चरण कमल जो वहां पर सुर ये जो सुधर्मा सभा यानी कि जो द्वारिका की सभा है ना जहां पर भगवान बैठते थे उसको बोलते हैं सुधर्मा सभा। तो भगवान के चरण कमल उस सुधर्मा सभा में हमेशा होते हैं जो वेश और जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है। वास्तव में ये जो सुधर्मा सभा है ना, ये कोई भौतिक जगत की कोई ऐसा पार्ट नहीं था, जैसे भौतिक जगत के जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होती है, ऐसा नहीं था। ये वास्तव में देवताओं के रहने की जगह थी और उनको बलात्, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती छीन लिया गया था उस जगह को, ये जो जहाँ पर भगवान रहते थे। सूर्य सत्तम उचिता, सूर्य सत्तम मतलब देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ, ये देवताओं के भी योग्य है, देवताओं से भी जो श्रेष्ठ है उनके योग्य है, और वहां से उनको छीन कर यहाँ पर द्वारिका में लाकर उस जगह को रख दिया था, और भगवान के चरण कमल वहां पर रहते। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसी जगह जो इतनी सुरक्षित है और इतनी संपन्न है, तो वहां पर किसी किस्म का कोई भय तो होना ही नहीं चाहिए, और ना ही किसी को कोई हानि हुई होगी, तो तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। अनुवाद देखिए, बड़े बड़े यदुवंशी वीर श्री कृष्ण की बाहों द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतिव उनके चरण उस सुधर्मा की सभा भवन में पड़ते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान के सीधे सेवक हैं, वे भगवान द्वारा सभी भयों से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वो बलपूर्वक एकत्रित क्यों न किया गया हो। यानी कि भगवान के भक्तों को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उनको दुनिया में जो कुछ सबसे श्रेष्ठ है वो प्राप्त हो जाएगा, भगवान उनके साथ है, तो ये न कहना प्रकार सारी सामग्रियां भी उनके साथ ही होंगी। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारिकापुरी सम उन्नति पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा उन्नति पर थी, बहुत ज्यादा एडवांस थी, क्योंकि वहां पर भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। जो सभा भवन, जो सुधर्मा जो भवन था ना, जहां पर भगवान राज्य का सभा भवन जो था, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, वो सब जितने भी राजा होते हैं अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बनाते हैं कि जितनी मेरी प्रतिष्ठा है ऐसा सभा भवन बनना चाहिए। तो स्वर्ग लोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण कर नहीं सकते। अभी जो देवताओं के योग्य जो था, देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुसार था, तो महिमंडल मतलब इन भौतिक जगत में इस पृथ्वी पर तो कोई ऐसा बना ही नहीं सकता है, चाहे कोई राजा कितना ही समृद्ध क्यों न हो, तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना। स्वर्ग जैसा यहाँ पर मटेरियल ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा। लेकिन आगे कहते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर विद्यमान थे, तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीन कर इसे द्वारिका में ला स्थापित किया था। अब यदुवंशियों के लिए यहाँ पर का यदु प्रवीरा, वो बहुत ज्यादा प्रवीर थे, बहुत एक तो खुद से ही इतने ज्यादा बलवान थे और ऊपर से भगवान के बाहुओं के द्वारा सुरक्षित थे, तो उनको किसी बात का कोई डर नहीं था। स्वर्ग में गए, सभा भवन को छीन कर लेकर आ गए और भगवान को दे दिया कि भगवान आप इसको अपना सभा भवन बनाइए, द्वारिका में स्थापित कर दिया। वे ऐसे बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं लाज उठाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय हैं। ये परस्पर प्रेम का संबंध है। भक्त सदैव चाहता है कि मैं भगवान को कैसे ही ज्यादा से ज्यादा आनंद दे सकूं, कैसे मैं भगवान को खुश कर सकूं, कैसे मैं उन्हें बहुत अपने प्रेम को व्यक्त कर सकूं, क्या दूं भगवान को, ऐसा क्या दूं जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। और जब भगवान देखते हैं कि भक्त कितना प्रेम से, भले
वो क्या वस्तु दे रहा है भगवान उसको देखते भी नहीं है, लेकिन उसने कितने प्रेम से दी है। अब देखो सारी वस्तुएं तो भगवान की हैं, भगवान को क्या किसी वस्तु की कमी है। ये स्वर्ग का राज्य तो तुच्छ राज्य है, भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ का राज्य भी भगवान के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई भगवान खुश हो रहे हैं कि हाँ मुझे वैकुंठ का राज दे दिया, वाह वाह मुझे स्वर्ग का। भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो जितना बन पड़े उतना वो भगवान को आनंद देने का प्रयास करते हैं, और उसके बदले में भगवान भी अपने भक्तों को वह सब प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी इच्छा होती है, उनको रक्षा प्रोवाइड करते हैं, उनको अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भक्त और भगवान का परस्पर प्रेम है। वैसे तो भगवान ने कह दिया कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रिया, किसी से मेरा द्वेष भी नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, मैं सबके साथ सम हूँ। लेकिन ये भजन ते तुमाम भक्त्या, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मई ते तेषु प्राप्यहम, मैं उनका हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं उसको उसका फल अवश्य दूंगा। तो वो जब अपना पूरा का पूरा प्रेम मुझे देते हैं तो बदली में मुझे भी अपना प्रेम उन्हें देना पड़ता है। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, भुलक्कड़ बद जीव भयभीत रहता है। जो भगवान के साथ रहता है उसके लिए कुतो भयामुहु, उसके लिए डरने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि राखे कृष्णा मारे कौन। तो फिर जिसकी सुरक्षा भगवान कर रहे हैं, जिसे यह श्रद्धा है, जिसे यह विश्वास है कि भले भौतिक जगत पूरा का पूरा सारे जीव मेरे दुश्मन हो जाएं, परंतु भगवान मेरी सुरक्षा करने वाले हैं, तो भला उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन भुलक्कड़ जीव, हम भौतिक जगत में आकर भगवान के संरक्षण को भूल जाते हैं, भगवान के प्रेम को भूल जाते हैं, भगवान के बल को भूल जाते हैं, इसीलिए तो भयभीत रहते हैं। यदि हमें भगवान के अंदर श्रद्धा हो ना, तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं है संसार में। क्योंकि ऐसा बताया 1.1.14 में हमने पढ़ा था, जिसमें सूत गोस्वामी वेदव्यास जी कहते हैं, आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो ग्रहण ततः सद्यो विमुच्येत यद्धि भेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिम घोराम, आपन्न का मतलब होता है जो फंसे हुए हैं, किसमें, संस्कृतिम घोराम, जन्म मृत्यु के घोर अत्यंत ही उलझे हुए चक्कर में फंसे हुए हैं। यन्नाम विवशो ग्रहण, अगर वो कभी उस भगवान का नाम अनजाने में विवश होकर बगैर किसी प्रेम के भी यदि वो ग्रहण कर लेते हैं, तो ततः सद्यो, विवश होकर भी यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो क्या होता है, ततः सद्यो विमुच्येता, ततः सद्यो, सद्यो का मतलब है बहुत ही जल्दी, इंस्टेंट विमुच्येता, वो मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यदि भेति स्वयं भयत, के जो भय है, स्वयं जो भय साक्षात जो यमराज है, वो भी भगवान के नाम से भयभीत हो जाता है, तो भौतिक संसार थी, ये जो भौतिक दुख है वो उनका क्या कहना। तो यदि कभी संसार में कभी दुख हो ना, कभी ऐसा फील हो कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, भय हो रहा है, तो शास्त्र की इस बात को याद कर लेना कि ये जो भगवान का नाम है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के नाम से तो साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है। तो फिर क्या करना, एक जगह पर जाना जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपने घर के एक रूम में चले जाना, और जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, जब भौतिक जगत के जो कष्ट हैं वो आपको बहुत सताएं, उस समय दरवाजा लॉक करना और जोर जोर से सिर्फ 3 बार बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना, यहाँ पर तो ये लिखा है यन नाम विवशो ग्रहण, अगर बगैर श्रद्धा के भी आप लेते हो ना, आपके मन में है कि मैं लूं, जैसे मेडिसिन कैसे खाते हैं, अगर सर में दर्द होता है तो कैसे मेडिसिन खाते हैं, उसके ऊपर कितना विश्वास होता है कि मैं ये मेडिसिन खाऊंगी पौने स्टन, आधे घंटा मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद मेरा सर का दर्द खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये भगवान का नाम है ना, वो इंजेक्शन है। आप भगवान के नाम को जब लेते हो तो भौतिक जितने भी ताप हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो पूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से तो यद्धि भेति स्वयं भयम, साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है। लेकिन संसार में भगवान के नाम पर, भगवान पर जीव विश्वास नहीं करता, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने पिता की कृपा पर आश्रित रहकर कभी किसी से नहीं डरता, जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसका पिताजी उसको गोद में उठाता है और आसमान की ओर जितना ऊपर हो सकता है उसको ऊपर फेंकता है, और छोटा सा बच्चा होता है मतलब अभी तक वो ऐसे ऊपर जब जा रहा होता है तो वो इतना हंसता है हंस हंस के अपने हाथ माउथ में डाल रहा होता है, और उसे पूरा का पूरा विश्वास होता है कि नीचे मेरा पप्पा खड़ा है, वो मुझे अवश्य पकड़ लेगा। अगर उसका विश्वास एक सेकंड के लिए भी डगमगा जाए या उसके पिता हट जाए, मतलब वो तो मनुष्य है तो उससे गलती भी हो सकती है, बच्चे का क्या हाल होगा सोचो। लेकिन उस बच्चे को पूरा पता है कि नहीं, मेरा पिता कुछ भी हो जाएगा मुझे बचा लेगा, तो वो डरता नहीं है। उसी तरह एक जीव को पूरा विश्वास होना चाहिए कि संसार के कितने ही बड़े दुख क्यों ना हो, मेरा पिता, मेरा भगवान, मेरा कृष्ण मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे दुख पहुंचाने के लिए नहीं, मतलब किसी भी तरह से मुझे दुखी होने नहीं देगा, मेरी अवश्य रक्षा करेगा, तो फिर वो बहुत ही आनंद से दुखों में भी जी सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है जिसमें वह निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। दुख का ये जो डर है उसका मतलब है हम क्योंकि अभी तक जागृत अवस्था में नहीं है, निद्रा में है, ऐसे भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, इसी के कारण डर लगता है। और इसी निद्रा से जगाने के लिए वैष्णव आते हैं, महाप्रभु आते हैं और कहते हैं जीव जागो गौरचंद्र बोले, क्योंकि ये माया है, पिशाचनी है, इसकी गोद में तुम कब तक सोते रहोगे, जागोगे तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दुख तो केवल निद्रा में, तुम निद्रा में हो, तुम जागृत अवस्था में नहीं हो तभी तुम दुखी हो, जाग जाओ तो तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि स्वाभाविक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.20 में कहा गया है न जायते मिर्यते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कहा गया है तो फिर भीरुता का क्या कारण है, फिर डरने की क्या वजह है, जब आप कभी मरोगे ही नहीं तो फिर डरने की क्या वजह है। कोई व्यक्ति स्वप्न में शेर से डर सकता है किंतु उसी की बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई शेर नहीं दिखता, यह शेर दोनों के लिए अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर कोई शेर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वह भयभीत रहता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने पूरा भय के विषय में बताया कि जीव भयभीत इसीलिए है क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है।
जब भी उसे याद आ जाए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान मेरे संरक्षण मेरा संरक्षण कर रहे हैं, भगवान मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसे संसार में किसी भी वस्तु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्योंकि व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन को भूल जाता है, इसीलिए वो भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता है वह बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्णतया जागरूक थे, अतएव उनके लिए शेर से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न नहीं उठता। यदि असली शेर भी होता तो भी भगवान रक्षा करने के लिए तो थे ही। तो भगवान तो अगर भगवान को तुम अपने साथ समझते हो, अगर आप सोचते हो कि भगवान सदैव मेरे साथ है, तो फिर डरने का कोई भी कारण ही नहीं है। और दूसरी बात, हमें शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र कहता है अभिन्न अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जितना पावर भगवान के अंदर है उतना ही पावर भगवान के नाम में है। महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दिए। अब जब भगवान स्वयं साक्षात इस भौतिक जगत में थे, तब भगवान जब गोकुल में होते थे तो मथुरावासियों को उनके दर्शन नहीं होते थे, जब मथुरा में होते थे तो गोकुलवासी दर्शन से वंचित रहते थे, कभी द्वारिका चले जाते थे तो हस्तिनापुर वाले परेशान हो जाते थे। लेकिन भगवान ने देखा कि कलयुग के जीव वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, उन्हें तो एक क्षण भी अगर मेरा साथ नहीं मिलेगा, मेरा सानिध्य नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं कोई ऐसा अवतार लूं कि मैं हर समय हर व्यक्ति के पास रह सकूं। तो भगवान ने इस कलयुग में अपना नाम रूप में अवतार लिया है। ये नाम साक्षात भगवान है। जब हम भगवान का नाम लेते ना, तो भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, साक्षात भगवान हमारी जिह्वा पर प्रकट हो जाते हैं। अभी देखिए, हम लोग एक कथा पढ़ते हैं रामायण में कि शबरी भगवान को बेर खिलाना चाहती थी, लेकिन वो सारे बेर झूठे कर रही थी, है ना, खा रही थी, खुद टेस्ट कर रही थी। उसका भाव यही था कि मैं भगवान को खिलाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बेर खट्टे हों तो भगवान को पसंद नहीं लगेंगे, इसलिए जो मीठे मीठे बेर हैं मैं खाली वही भगवान को खिलाती हूँ। लेकिन ये झूठे बेर थे, लेकिन भगवान ने उन्हें झूठा नहीं समझा, क्योंकि झूठे होते तो शायद भगवान ना खाते। लेकिन भगवान ने देखा कि वो जब बेर खा रही थी तो मुख में भी राम और हृदय में भी राम। अभी मुख में राम खुद आ गया तो वो झूठा भी भगवान ने ही किया, वो बैठा हुआ था अंदर, जैसे वो जो भी बेर खाती थी ऐसे बोलती हे राम, फिर दूसरा खाती थी हे राम, तो अंदर भी तो भगवान ही बैठे हुए हैं अपने नाम के स्वरूप में, उसी को खा रहे हैं। तो भगवान वो ऐसे संतगण टीका करते हैं कि वो बेर पहले भी राम ने ही झूठे किए थे, क्योंकि मुख में भी तो राम ही था। राम का नाम, भगवान का नाम साक्षात भगवान है, भगवान से अभिन्न है। तो जो भगवान का नाम लेता है वो सदैव सुरक्षित रहता है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान के नाम पर श्रद्धा रखिए, सदैव जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान के नाम में श्रद्धा प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।